मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। आज 15 जून 2015 के इस afeis.com के डेली ऑडियो गाइडेंस में अभिनय सभी प्रिय आप दोस्तों का स्वागत करते हुए मुझे बेहद प्रसन्नता हो रही है दोस्तों। और यह प्रसन्नता खासकर इसलिए हो रही है कि आज मैं आप लोगों का स्वागत कर रहा हूं अपने ही देश हिंदुस्तान की धरती से और भोपाल नगर से। मित्रों, आप समझ गए होंगे कि मेरी पत्नी प्रीति और मैं कल ही अमेरिका से सकुशल भोपाल लौट आए हैं। आप लोगों की शुभकामनाएं इस यात्रा के दौरान लगातार हम लोगों के साथ रही हैं। और मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल अब आपका स्वागत न केवल भोपाल से ही कर रहा हूं बल्कि कुछ दिनों तक लगातार भोपाल से ही स्वागत करता रहूंगा। और दोस्तों, इसी क्रम में मैं स्वागत करता हूं अपने उन 12 नौजवान साथियों का भी जिन्होंने इस बीच एकेडमी की जो अक्टूबर में क्लासेस होने वाली हैं उनके लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन नौजवान साथियों के नाम हैं महेंद्र त्रिपाठी जो डोंगरगढ़ छत्तीसगढ़ से हैं और डोंगरगढ़ छत्तीसगढ़ से ही हैं गिरीश कुमार धामगए। तीसरे साथी का नाम है कपिल भादरे जो रामपुर उत्तर प्रदेश से हैं। शिवम श्रीवास्तव भोपाल से हैं। राघवेंद्र मिश्रा इलाहाबाद से हैं। धीरन कुश यादव मुरैना दिल्ली से हैं। राजेश चंद्र कोरबा छत्तीसगढ़ से हैं। राकेश सिंह रायगढ़ से। संजय कुमार भारती कानपुर से। राजेश कुमार वर्मा इलाहाबाद से। शेष नाथ सिंह आरा बिहार से। और सुरेंद्र चौधरी बीकानेर से। तो महेंद्र, गिरीश, कपिल, शिवम, राघवेंद्र, धीरेन, राजेश, राकेश, संजय, राजेश, शेषनाथ और सुरेंद्र, मैं आप सभी 12 साथियों का एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, इसी क्रम में मैं आपको यहां यह भी बताना चाहूंगा कि अभी मैं मेल देख रहा था और खासकर अभी मैंने केवल सैटरडे और संडे को जो मेल आए हैं वही देखे हैं। इससे पहले जिन्होंने भी मेल लिखे थे अभी मैं उन्हें बाद में शामिल कर सकूंगा, जितना भी वक्त मिला है उसमें मैं इतना ही कवर कर पा रहा हूं। उसमें बहुत से स्टूडेंट्स ने मेल में ये पूछा है कि वे अक्टूबर की क्लासेस में आना चाह रहे हैं और उन्हें प्रोसीजर बताया जाए। मैं यहां दो बातें आप लोगों से खासकर शेयर करना चाहूंगा। पहली बात तो ये कि जो afeis.com में पूरा का पूरा प्रोसीजर उस वेबसाइट पर दिया हुआ है कि आप कैसे रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, फिलहाल अभी आपको सिर्फ 2000 रुपए देकर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है। आपको बैंक जाना होगा, एक अकाउंट में आपको पैसे डलवाने होंगे और पैसे वहां बैंक में दे देने के बाद आपको एक उसी प्रोसीजर के अंतर्गत फोन नंबर दिया हुआ है, उस फोन नंबर पर आपको एकेडमी को इन्फॉर्म करना होगा और फिर आपको 24 घंटे के अंदर आपका जो एनरोलमेंट नंबर होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, वो आपको मिल जाएगा। तो सारी प्रोसीजर उसमें दी हुई है, तो आप उस प्रोसीजर को देख लें। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है मित्रों कि मैं बताना चाहूंगा कि अब मुझे बताया गया है कि बहुत ही थोड़ी सी सीट्स रह गई हैं जबकि अक्टूबर का बैच पूरा हो जाएगा। इसीलिए यदि आप लोगों में से कोई इस बॉर्डर लाइन पर हैं कि उन्हें कराना ही है या नहीं कराना है, वो अपने बारे में निर्णय ले लें। और जिन्हें भी रजिस्ट्रेशन कराना है, जिनके फैसले हैं कि उन्हें कराना ही है, अब वो बिल्कुल भी ज़्यादा वक्त न लगाएं क्योंकि थोड़ी सी सीट बची हैं और जैसे ही वो सीट्स फुल होंगी डेफिनेटली अक्टूबर के बैच के रजिस्ट्रेशन हमें बंद करने होंगे। इसी क्रम में तीसरी बात ये भी है मित्रों कि कई मेल ऐसे भी पढ़ने को मुझे मिले कि उन्होंने पूछा है कि वे आ सकते हैं या अक्टूबर के क्लास में नहीं आ सकते हैं। कुछ लोगों के सामने संकट ये भी है कि इसके बाद दिसंबर में उनके मेंस होंगे तो उन्हें अक्टूबर की क्लास ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इस बारे में देखिए, जो सही निर्णय है वो आप ही ले सकेंगे, लेकिन जहां तक एकेडमी की इस तरह की क्लासेस को ज्वाइन करने की योग्यता का सवाल है, हमने सिर्फ ये क्राइटेरिया रखा हुआ है कि कॉलेज गोइंग स्टूडेंट आफ्टर 12th वो इस क्लास को ज्वाइन कर सकता है, और वो जितनी जल्दी इस क्लास को ज्वाइन करेंगे डेफिनेटली उन्हें अपने पूरे एकेडमिक कैरियर में उसका उतना ज़्यादा फायदा होगा। वो उतने ज़्यादा समय पहले ये जान सकेंगे कि उन्हें आईएएस की तैयारी कैसे करनी चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, और डेफिनेटली इसका लाभ उन्हें अपने कॉलेज के कैरियर में भी मिलेगा, और वो फिर सिविल सर्विस के साथ ही साथ दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी भी बेहतर तरीके से कर पाएंगे। तो मित्रों, इस सूचना के बाद अब मैं आता हूं अपने नेक्स्ट स्टेज पर, और वो मोटिवेशन का स्टेज है। मित्रों, यहां मैं आप लोगों से केवल एक बात और शेयर करना चाहूंगा जो लगातार मैं यूएस से आप लोगों से शेयर करता रहा हूं। सच पूछे तो जब अमेरिका जाने का प्रोग्राम बना था तो इस बात को लेकर के हम लोगों में बहुत जबरदस्त द्वंद था कि वहां जाने के बाद ये जो पूरा का पूरा डेली ऑडियो गाइडेंस का जो पैटर्न है इसको कैसे फुलफिल किया जा सकता है। क्या 15 दिन के लिए ये जो मेरा जो स्पीकिंग पार्ट होता है उसको ड्रॉप कर दिया जाए और प्रेस क्लिपिंग्स को कंटिन्यू किया जाए, और यदि स्पीकिंग वाले पार्ट को रखा जाता है जिसको हम डेली एनालिसिस कह सकते हैं, तो वो कैसे पॉसिबल होगा। और मित्रों, सच पूछिए तो इसको पॉसिबल करना आसान नहीं था। देखिए, पहली बात मैं क्लियर कर दूं कि यह बात मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा हूं कि मैं कुछ बताना चाह रहा हूं। मैं ये खास एक मकसद से ये बात आपके सामने आज के मोटिवेशन में रख रहा हूं, वो इसलिए कि इससे पहले मेरे पास बहुत से मेल आए हैं और शुरू से आ रहे हैं, और उनकी प्रॉब्लम सही भी है। उनकी समस्या ये है कि कैसे वे अपने टाइम को मैनेज करें। कोई सर्विस कर रहा है, कोई कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है, कोई किसी दूसरे काम में बिजी है, तो ऐसी स्थिति में उनको लगता है कि टाइम उनके पास है ही नहीं, लेकिन वे आईएएस बनना चाहते हैं, सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं, तो वो क्या करें। मित्रों देखिए, सवाल यह है कि अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आपको टाइम निकालना पड़ेगा, क्योंकि पढ़ने का तो कोई विकल्प नहीं है, तैयारी करने का तो कोई विकल्प है ही नहीं। सवाल यह है कि आप तैयारी करने के लिए जो समय चाहिए उसको कैसे निकालेंगे। पहली तो बात है कि आपको आपके पास समय होना चाहिए। हां, अगर आपके पास पढ़ने का तरीका मालूम है, एक सही तरीके से आप जानते हैं कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विसेज, तो कम समय में आप ज्यादा आउटपुट दे सकेंगे। तो इसके बारे में मित्रों मैं अक्सर जवाब देता था कि देखिए, यदि आप चाहते हैं तो समय निकाल सकते हैं, क्योंकि समय की इतनी बड़ी समस्या नहीं होती है जितनी बड़ी समस्या लोग समझते हैं। लेकिन मुझे मालूम है कि मेरे इतना कह देने भर से उनकी समस्या सुलझ नहीं जाती है। वो बल्कि मुझ पर अविश्वास ही करते हैं कि सर ये क्या बात कर रहे हैं, भोग हम रहे हैं, जान हम रहे हैं, और उपदेश देना बहुत आसान है, और सर कह देते हैं कि भाई अगर आप चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, समय कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, उनको विश्वास नहीं होता है। तो मित्रों, मैं आज के मोटिवेशन में जिस बात की चर्चा करने जा रहा हूं वो केवल एक छोटी सी इस बात की है कि किस तरीके से इस पूरे के पूरे डेली ऑडियो गाइडेंस के पैटर्न को मैनेज किया गया और आप लोगों को प्रोवाइड किया गया, और ये करना आसान नहीं था, और सच पूछे तो असंभव सा ही लग रहा था। लेकिन हम लोगों ने जाने से पहले यह फैसला किया कि नहीं, इसको तो करना है। दैट्स ऑल, द फर्स्ट स्टेज इज टू डिसाइड कि नहीं, मुझे तो ये करना ही है। मेरी परिस्थिति चाहे जो भी हो, मैं जो भी नौकरी कर रहा हूं, सब वक्त जितना भी कम हो, लेकिन मुझे अगर सिविल सर्विस क्वालिफाई करना है या प्रिपरेशन इसकी तैयारी करनी है तो करनी है। पहले तो बात यह है कि आपके उस डिसीजन में किसी तरह का कोई छिद्र, कोई होल नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप छोटा सा भी होल छोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें दूसरे तर्क घुस घुस करके आपको कमजोर कर देंगे और सिद्ध कर देंगे आपकी मेरे पास समय नहीं था, मैं करना तो चाहता था लेकिन अगर समय नहीं था तो मैं क्या करूं, ये आपको सिद्ध कर देंगे आप। तो पहली बात है फ्रेंड्स की टू टेक ए डिसीजन, फर्म डिसीजन। हम लोगों ने फर्म डिसीजन लिया कि नहीं, इसको किसी तरीके से करना है। हम अपने स्टूडेंट्स को लगभग 3 सप्ताह के लिए इस अवसर से पूरी तरह वंचित नहीं कर सकते। मेरे सामने सीमा ये थी फ्रेंड्स कि मैं बहुत कंप्यूटर फ्रेंडली नहीं हूं, मैं सच पूछे तो बहुत इसको बहुत ज्यादा हैंडल नहीं कर पाता, ये मेरी सीमा थी, और बिना टेक्नोलॉजी के आप इसको कुछ कर नहीं सकते हैं। तो पहला संकट तो ये था। उस संकट का समाधान मैंने यहां उस कंप्यूटर फ्रेंडली हुआ कि मुझे अपने अपने लेवल पर किन किन टेक्निक्स की जरूरत पड़ेगी, और यदि कुछ इसमें प्रॉब्लम हो गई तो मैं क्या करूं। तो उसके लिए फिर हमने यूएसए बात की, जहां जहां हम लोगों को जाना था वहां वहां बात की मैंने, और फिर उन लोगों से जानकारी ली और पता किया कि हां वहां कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति था जो कंप्यूटर फ्रेंडली था, जो संकट आने पर मेरी मदद कर सकता था। और सच पूछे तो संकट आए और उन लोगों ने मदद की, तो पहले तो हमने ये किया। दूसरा, अपने मित्रों वहां जाने के बाद ऐसा नहीं था कि चीजें बड़ी आसान सी थी और आप गए और अगर आपको कंप्यूटर आ गया है तो अब आप सब कुछ कर लेंगे। दूसरे बहुत से फैक्टर थे, सबसे बड़ा फैक्टर तो यह था कि टाइम का फैक्टर, और टाइम का फैक्टर दो एंगल से, नंबर एक वहां और यहां के टाइम में लगभग 9.5-10 घंटे का फर्क है, यहां सुबह हो रही तो वहां रात और वहां रात हो रही तो यहां सुबह, और हमको दोनों का एसोसिएशन चाहिए था क्योंकि अखबार और दूसरी चीजों की बात करनी थी। और दूसरा टाइम फैक्टर का जो सबसे बड़ा जो चैलेंज फैक्टर था कि वहां हम आराम करने नहीं गए थे, वहां बहुत से प्रोग्राम्स थे, लोगों से मिलना था, उसमें ट्रैवल भी करना था, और उन प्रोग्राम के बीच में मुझे कम से कम 2 घंटे का इत्मीनान का वक्त चाहिए था, जब मैं न्यूज सुन सकूं, जब मैं अखबारों को पढ़ सकूं, जब मैं अपने कुछ पॉइंट्स तैयार कर सकूं सोच करके, और इसके बाद रिकॉर्डिंग कर सकूं, और रिकॉर्डिंग करने के बाद फिर मैं इंडिया से टाई अप कर सकूं, कोऑर्डिनेशन कर सकूं, और इंडिया से कोऑर्डिनेशन करके फिर मैं अपना जो साउंड है वो रिकॉर्डेड साउंड है वो इंडिया भेज सकूं, और फिर इंडिया में वो उसे यहां डाल सके। यानी कि इंडिया में भी मुझे टाइम फिक्स करके उनको डेली ये बताना होता था कि आप इस टाइम पर इस समय कंप्यूटर पर मौजूद रहिए, और वो वक्त यहां के हिसाब से रात के 2-2 बजे 3-3 बजे तक होता था। मैं आपको केवल चैलेंजेस बता रहा हूं, क्योंकि अगर मैं सीधे सीधे बात बताऊं कहूंगा तो आप सोचेंगे कि कोई बात नहीं, आप कंप्यूटर फ्रेंडली हो गए तो आप इस काम को अंजाम दे सकते हैं। मैं आपको केवल उन बाधाएं बता रहा हूं, वो सीमाएं बता रहा हूं जो थी, लेकिन उन सीमाओं को लांघा गया, उनको पार किया गया, उनको जीतने नहीं दिया गया। अगर करना है तो फिर करना है। मित्रों, हम केवल एक ही जगह रहने नहीं गए थे, हमारे टूर्स होते थे, टूर्स के टाइम होते थे, फ्लाइट के टाइम होते थे, कार के ड्राइविंग टाइम होती थी, और पता लगा कि जब आप नई जगह चले गए हैं तो वहां बिल्कुल एक नई सिचुएशन है, वहां आपको रिकॉर्ड करने के लिए अलग से एक शांत जगह चाहिए जो बहुत मुश्किल है, क्योंकि जहां हम जा रहे हैं वहां बातचीत करने के लिए जा रहे हैं, वहां एक अलग उत्साह है, उमंग है, जोर जोर से बातें हो रही, और फिर आप जा रहे हैं मिलने के लिए, फिर आपको 2 घंटे स्केप करके अलग से समय चाहिए, और वो भी शांत समय चाहिए। एक बार तो ऐसी विचित्र से स्थिति हुई कि जब हम फ्लोरिडा स्टेट में मियामी में पहुंचे, रात पहुंचे लगभग 11:30-11 बजे, वहां रात के बजे हुए थे, और मैंने पहले पता कर लिया था, उन्होंने कहा कि हां वहां जिस जहां हम जा रहे हैं वो घर बंद था, हम लोगों ने जाकर के घर खोला, जो हमारे साथ गए थे उनका ही वहां एक बहुत बड़ा मकान है, हम लोग वहां गए, रात के 11 बजे पहुंचे, और सब कुछ करने के बाद फटाफट जब मैंने 11:30 बजे अपना कंप्यूटर ऑन करने की कोशिश की तो पता लगा कि इंटरनेट कनेक्शन ही नहीं है, और रात के 11:30 बज चुके थे। अब क्या करें, और मुझे किसी न किसी हालत में रात में ही रिकॉर्डिंग करनी थी, सारा काम करना था, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग हम लोगों का फिर कहीं जाने का प्रोग्राम था। व्हाट टू डू देन, मैंने उनसे बात की, उन्होंने रात के 11:30 बजे फिर कंप्लेंट किया और कहा कि इट्स वेरी अर्जेंट, यू विल हैव टू कम एंड सॉल्व दिस प्रॉब्लम। वो 11:30 बजे 12:15 बजे जब उनकी बात खत्म हुई तो 1 बजे जाकर के वो इंटरनेट की प्रॉब्लम सॉल्व हुई, और उस दिन 3 बजे रात में कहीं यह रिकॉर्डिंग का काम पूरा हो सका, और सुबह 6:30-7 बजे हम लोगों को फिर कहीं के लिए निकलना था। मित्रों, में एक छोटी छोटी घटनाओं की चर्चा अपनी कोई बड़ी महारत दिखाने के लिए मैं आपको बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हम लोग तो ये सब करते ही रहे हैं। जब 10 साल मैंने राष्ट्रपति जी के साथ काम किया उनके प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में, और उस समय वाइस प्रेसिडेंट भी थे, तब इस तरह के मौके बेहद कई कई बार आते थे, इनसे भी ज्यादा उलझने वाली चीजें होती थी। और मेरे इस काम पर तो केवल आपकी ही निगाह है, जो मेरे प्रिय श्रोता है कि इसके बारे में तो वही जानेंगे, और वो काम तो ऐसे होते थे कि अगर वो गड़बड़ हो गया तो उसे पूरा देश और पूरी दुनिया जान सकती थी। वहां भी हम लोगों ने इस तरह के चैलेंजेस लिए, इसलिए इस बात पर बहुत ज्यादा यकीन हो गया है कि नहीं, यदि आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो जिनके पास सब कुछ है, समय भी है, सुविधाएं भी हैं, और सच पूछे तो इच्छाएं भी हैं, डिसीजन भी लेते हैं, लेकिन डिसीजन में कुछ ऐसा पोलापन रह जाता है कि वो चाहकर भी नहीं कर पाते। तो दोस्तों, मैंने ये कुछ संकटों की चर्चा की है, वक्त जितना मुझे इजाजत दे रहा है उस समय सीमा के अंतर्गत मैंने थोड़ी सी परेशानियां और उन चैलेंजेस को आपके सामने रखा है, जो इस डेली ऑडियो गाइडेंस को निभाने के लिए के दौरान जिसका सामना करना पड़ा, और आप लोग इस बात के दोस्तों गवाह हैं कि एक दिन भी वो ऑडियो गाइडेंस मिस नहीं हो पाया। सच पूछे तो इस बात को लेकर के हमारी एकेडमी की पूरी टीम को बहुत अधिक संतोष है, क्योंकि यहाँ के लोगों को भी अपने अपने हिसाब से वो सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ी थी। तो मित्रों, जहाँ कोई ग्रुप काम करता है, याद रखिए वहाँ चैलेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि एक ही आदमी फेस करने वाला नहीं है, कई लोगों की समस्याएं जुड़ करके एक समस्या का सामना कर रही हैं। लेकिन जब एक ही आदमी को फेस करना होता है तो वहां दिक्कत ज्यादा नहीं होती, क्योंकि उसको अपने आप को ही ऑर्गेनाइज करना है, वहां वो कुछ भी कर सकता है। तो सिविल सर्विस की तैयारी में तो आपको सिर्फ खुद को ऑर्गेनाइज करना है, इसलिए आपके सामने उतने बड़े चैलेंजेस नहीं है टाइम को लेकर के। हाँ, यदि आप अपनी अभी की सारी वर्तमान व्यवस्थाओं के बीच में ही चाहते हैं, जिनको बिना रीमैनेज किए ही सब चीजें वो भी उसमें शामिल हो जाए, सिविल सर्विस की तैयारी भी, आप सब कुछ अभी जो कुछ कर रहे हैं उसी तरह से करते रहे और बीच में सिविल सर्विस की तैयारी भी शामिल हो जाए और सारी चीजें ज्यों की त्यों होती रहे, तो दैट इज नॉट ए पॉसिबल, दैट इज वेरी अनरियलिस्टिक अप्रोच अबाउट द लाइफ एंड टाइम मैनेजमेंट आल्सो। तो दोस्तों, इस बात को आप लोगों को समझना होगा और विश्वास कीजिए कि यदि आप चाहेंगे तो आप कर सकते हैं। बजाय इसके कि मैं इसी बात को आपको उपदेश के तहत कहता, मित्रों जो कुछ भी पिछले 3 सप्ताह में हुआ है उसके केवल प्रक्रियाओं को बताकर वही बात मैं आपको इसके अंतर्गत बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो दोस्तों, आज के इस मोटिवेशन वाले सेक्शन में बस इतना ही। अब हम नए नए विषय चुनेंगे, जो आप लोगों के जो मेल आएंगे उसमें से विषय निकाला जाएगा और फिर हम लोग बात करेंगे और खूब जमकर बात करेंगे। अब टाइम का और व्यवस्था का और उस तरह का कोई संकट नहीं रह गया है और जो डेली रूटीन की लाइफ होती है वो तो दोस्तों चलती रहती है, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, उसे हमें चेतावनी भी नहीं मानना चाहिए, उसे हमें किसी तरह का कोई कष्ट तकलीफ परेशानी चैलेंज नहीं मानना चाहिए, वो तो पार्ट ऑफ लाइफ है। और जब हम किसी भी बड़े से बड़े संकट को भी हम अपना पार्ट ऑफ लाइफ बना लेते हैं तो लाइफ का हिस्सा बनते ही हमारे लिए बहुत आसान सरल और सहज हो जाती है, उसमें कोई परेशानी फिर वो खड़ी नहीं रह पाती। तो दोस्तों, अब मैं आता हूं अपने सेकेंड स्टेज पर, AIR न्यूज का स्टेज। आप लोगों ने AIR न्यूज सुनी ही होगी, जैसा कि अभी तक आप लोगों का अनुभव रहा होगा कि जो संडे की जो न्यूज होती है उसमें हमारे सिविल सर्विस की तैयारी के लायक कोई बहुत ज्यादा चीजें उपलब्ध नहीं हो पाती हैं, क्योंकि बट नेचुरली कि सैटरडे संडे को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बंद, मतलब कि छुट्टी होती है, ऑफिसेज की छुट्टी होती है, मंत्रालय भी काम नहीं करते हैं, ऐसी स्थिति में स्वाभाविक है कि घटनाएं कम घटेंगी। फिर भी ऐसा नहीं होता कि कोई भी चीज हमें अपने लायक ना मिले और हम ये मान करके कि चूंकि सैटरडे संडे को ऑफिसेज बंद होते हैं, मंत्रालय बंद होते हैं, इसीलिए हम न्यूज ना सुने तो भी चलेगा, ऐसा आपको गलती से भी सोचना नहीं चाहिए। कुछ चीजें छोटी छोटी इंपॉर्टेंट थी न्यूज में, उनकी मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा। एक मित्रों, आपने फिर से देखा जो मैंने कुछ दिनों पहले के ऑडियो गाइडेंस में आपको बताया था कि एक न्यूज आई थी और वो न्यूज इतनी इंपॉर्टेंट होने के बाद भी क्यों उतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, खासकर वो बिहार के चुनाव में जो अलग अलग पार्टियां अपनी चुनावी रणनीतियां तैयार कर रही हैं, अलायंस कर रही हैं एक दूसरे से, उसको लेकर थी। इसी तरह की एक न्यूज अभी आज कल के में आपने सुनी कि ललित मोदी जो IPL के पहले कमिश्नर रहे हैं उनको खासकर दूसरे पुर्तगाल जाने की अनुमति देने के मामले में हमारे विदेश मंत्री जी के हस्तक्षेप को लेकर के एक न्यूज थी। दूसरी पार्टियों ने विदेश मंत्री को गलत ठहराया है, विदेश मंत्री के खिलाफ एक्शन लेने की बात कही है, जबकि सरकार ने उनका अपनी तरफ से बचाव किया। इस न्यूज को लेकर के काफी लंबा, काफी बड़ा टुकड़ा लिया गया था। अब आप देखेंगे कि चूंकि ये पूरी तरह से जो भी हो एक राजनीति से प्रेरित न्यूज है, एक पार्टी आक्षेप कर रही है, दूसरी पार्टियां भी उसके साथ हैं, सब जो सत्ताधारी पार्टी है उनका बचाव कर रही है, लेकिन ये न्यूज इतनी बड़ी न्यूज नहीं है जिससे कि कोई बहुत बड़ा राष्ट्रीय हित का सदता हो, या कह लीजिए कि राष्ट्रीय हित के विरोध में ये खबर हो। आप देखेंगे कि इस न्यूज के जो बेस में है वो पूरा एक वर्किंग पैटर्न है और सच पूछे तो राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश है या राजनीति नुकसान पहुंचाने की कोशिश है या आलोचना करने की कोशिश है, बचाव करने की कोशिश है, इसे आप जिस रूप में भी लेना चाहें, लेकिन यह जरूर है कि सिविल सर्विस की तैयारी से इसका कोई बहुत लेना देना नहीं है, ना यह कोई ऐसा कंटेंट है जिसका इस्तेमाल हम आगे चलकर बहुत ज्यादा कभी कर सकेंगे। इसीलिए ऐसे न्यूज को फिर हमें किनारे कर देना ही ज्यादा सही लगता है। सुने और इसके बाद भूल जाएं, वो हमारे दिमाग में दर्ज होगा और बस उतना ही पर्याप्त होगा। मित्र, जो तीन चार जो छोटी छोटी खबरें थी आज, उनकी मैं चर्चा करना चाहूंगा जो मुझे थोड़ी सी महत्वपूर्ण लगती हैं। खासकर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट खबर थी, वो थी इंटरनेशनल अफेयर्स के फील्ड में दो खबरें। पहली जो खबर है दोस्तों, वो है भारत, चार देशों के नाम आए थे भारत, जिसमें है दूसरा है बांग्लादेश, तीसरा है भूटान और चौथा है नेपाल। ये चार देश मैप में आप देखेंगे कि चारों एक बिल्कुल एक दूसरे से सटे हुए देश हैं। ये ट्रांसपोर्ट सेक्टर में एक संधि पर हस्ताक्षर करने जा रहे हैं, समझौते पर हस्ताक्षर करने जा रहे हैं और सोमवार आज के दिन हस्ताक्षर होंगे। ये हस्ताक्षर हो जाने के बाद इन चारों देशों में जो माल की आवाजाही जो ट्रकों से होती है वो बिल्कुल फ्री हो जाएगी। यानी कि ये हमारे जो ट्रकें हैं, जो सामान एक दूसरे के देशों में आता है, वो फ्री एक दूसरे के देशों में आ जा सकेंगे। तो डेफिनेटली इसका जो संबंध है, जो सीधा संबंध है, वो व्यापार से है। व्यापार बहुत फ्री हो जाएगा, सामान की आवाजाही में जो दिक्कतें होती थी, जो टाइम लगता था, वो खत्म हो जाएगा। और सच पूछिए तो इस तरह के जो समझौते होते हैं वो कहीं ना कहीं इस बात को भी शो करते हैं, इस बात को भी बताते हैं कि इन चार देशों के आपसी जो रिश्ते हैं वो बहुत ही फ्रेंडली हो रहे हैं, बहुत ही मित्रतापूर्ण हो रहे हैं और संदेह से परे हो रहे हैं। मतलब जब तक आप एक दूसरे पर बहुत ज्यादा विश्वास नहीं करेंगे तब तक इस तरह के समझौते सामान्यतया नहीं हो पाते हैं। और मित्रों, फिर से ये जो समझौता है हमारे इस मूल प्रश्न से जुड़ रहा है कि किस तरह से भारत वास्तव में पिछले एक साल से लुक ईस्ट के स्थान पर एक्ट ईस्ट की पॉलिसी को अंजाम देने में लगा हुआ है। ये हमारे सब के सब, आप देखेंगे कि सब हमारे पड़ोसी देश हैं और उसके नाते ये बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट हो जाता है और आपको इस कंटेंट को ध्यान में रखना चाहिए। और अगर सिविल सर्विस में कभी इस एक्ट पॉलिसी की बात का से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो उसमें एक इस तथ्य को आप डाल सकते हैं। मित्रों, इंटरनेशनल रिलेशंस का आप देखते हैं कि जो 250 नंबर का जो क्वेश्चन पेपर होता है, जो आपका जनरल स्टडीज का सेकेंड पेपर होता है मेंस का, उसमें लगभग 80 से 100 नंबर के क्वेश्चंस इंटरनेशनल रिलेशंस से पूछे जाते हैं। और इंटरनेशनल रिलेशंस के क्वेश्चन इस मायने में ज्यादा चैलेंज वाले होते हैं, क्योंकि यदि आपको आता है तब तो आप उसमें लिख सकेंगे और यदि नहीं आता है तो उसमें फिर कुछ भी लिखना कोई ज्यादा मायने रखता नहीं है। देखिए, अगर हमारे राष्ट्रीय समस्याओं के बारे में अगर कोई प्रश्न पूछा गया है, किसी योजना के बारे में कोई प्रश्न पूछा गया है और यदि हम उसे नहीं जानते हैं तो कुछ ना कुछ लिखने का कॉमन सेंस तो हम में होता है और हम लिख कर आ सकते हैं। लेकिन इंटरनेशनल रिलेशंस में कॉमन सेंस उतना ज्यादा काम नहीं करता है, वहां तो हमारे पास फैक्ट होने चाहिए। आप देखेंगे कि फैक्ट के आधार पर, खासकर इंटरनेशनल रिलेशंस के क्वेश्चंस के आंसर देना हमारे लिए बहुत आसान इस मायने में भी हो जाता है कि वहां फिर बहुत गहरे एनालिसिस की जरूरत नहीं होती। जो हमारे नेशनल क्वेश्चंस होते हैं, हमारे देश से संबंधित क्वेश्चंस होते हैं, उसमें तो बहुत गहरे सच पूछे तो विश्लेषण की जरूरत होती है, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस हो या सरकार की अपनी योजनाओं से, सोशल सेक्टर के क्वेश्चंस हो, उसमें फिर हमारी गहरी दृष्टि चाहिए। लेकिन इंटरनेशनल रिलेशंस में गहरी दृष्टि नहीं चाहिए। अगर इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए आपके पास कुछ फैक्ट्स हैं तो केवल उन फैक्ट्स के आधार पर ही जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर आप बड़े अच्छे से दे लेंगे। और दोस्तों, अगर आप इंटरनेशनल रिलेशंस में माइलेज ले लेते हैं, दूसरे स्टूडेंट से थोड़ा सा आगे निकल जाते हैं, तो यह आपके लिए बहुत फायदा इस मायने में होता है क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस पर स्टूडेंट्स की तैयारी बहुत अच्छी नहीं होती। हाँ, वो स्टूडेंट्स की बात मैं नहीं कर रहा हूं जिनके मेंस में पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है, क्योंकि उसका एक पार्ट, उनका जो फोर्थ पार्ट होता है वो इंटरनेशनल रिलेशन का होता है, तो डेफिनेटली उनकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाती है। अदरवाइज इस हिस्से में खासकर स्टूडेंट कमजोर पड़ जाते हैं। लेकिन यदि आप न्यूज पर ध्यान देंगे और जो मैं आपको तरीका बता रहा हूं कि केवल फैक्ट्स नोट करते चले जाएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक सेलेक्ट कर लेंगे और इन टॉपिक्स के अलग अलग पेजेस बना करके फैक्ट्स नोट करते चले जाएंगे, तो आप देखेंगे कि जो इंटरनेशनल रिलेशंस के क्वेश्चंस हैं आप उन्हें आसानी के साथ हैंडल कर सकते हैं और वो आपको माइलेज भी देगा। मित्रों, जो दूसरी खबर थी वो खासकर जो म्यांमार वाली खबर है, वो आपको मालूम है कि इस बीच में भारतीय सेना ने भारत और म्यांमार की सीमा के अंदर मतलब उत्थम म्यांमार देश की सीमा में 6 किलोमीटर अंदर जाकर के जो कैंप थे, खासकर जिसमें कुछ आतंकवादी शरण स्थली बना हुआ था, उनका कैंप था, वो ट्रेनिंग पाते थे या जो भी करते थे, ये घटना हुई है। इस घटना की चर्चा मैं अपने ऑडियो गाइडेंस में बहुत डिटेल में मैं नहीं कर पाया था, क्योंकि वहां कुछ सीमाएं थी, कुछ मुझे बैकग्राउंड चाहिए था, वो बैकग्राउंड मटेरियल मुझे नहीं मिल पा रहा था, कुछ और चीजें। तो ये जनरली एक थोड़ा सा मिसिंग टॉपिक है। और उस समय सच पूछे तो जब इस घटना की शुरुआत हुई थी तो कुछ बहुत लग भी नहीं रहा था कि ये इतना गंभीर रूप ले लेगी जितना रूप वो अभी ले चुकी है। अब आप देखें कि हमारे सिविल सर्विस से इसका क्या रिलेशन अब जाकर के जुड़ा है। जहां तक म्यांमार में वो बात घटना घटी थी तो उसके दो एंगल दोस्तों दिखाई दे रहे हैं। नंबर एक, जो सबसे बड़ा एंगल हमारे सिविल सर्विस के दृष्टि से, वो है हमारे इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर। आपने देखा है कि सरकार ने स्टेटमेंट दिया है कि इस घटना के बाद, म्यांमार की घटना के बाद, जो हमारी आंतरिक सुरक्षा है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा है, उसके प्रति लोगों का दृष्टिकोण बदला है। तो ये लोगों का दृष्टिकोण बदला है का मतलब क्या हुआ? नो डाउट भारत के लोग ये शायद ये सोचने लगे हैं कि नहीं, सरकार अपनी आंतरिक सुरक्षा, हमारी जो राष्ट्रीय सुरक्षा है, इसके प्रश्न पर, इस प्रश्न पर कोई किसी तरह का समझौता नहीं करेगी और किसी तरह की कमजोरी नहीं दिखाएगी, वो भले ही उसको फिर कितना भी एक्टिव क्यों ना होना पड़े। ये लोगों में विश्वास आया है। नो डाउट सेना में भी एक विश्वास आया होगा कि नहीं, ऐसा नहीं है कि दूसरे देश के लोग, दूसरे देश की सेना या आतंकवादी सेना पर कितना भी आक्रमण करते रहे और सेना कोई जवाब नहीं देगी। इस बारे में भी उनमें एक आंतरिक विश्वास पैदा हुआ है। और डेफिनेटली जो आतंकवादी गतिविधियों में जो लगे हुए लोग हैं, उनके मन में भी एक फियर आया होगा कि नहीं, सरकार बहुत एक्टिव है और अब वो उन्हें उतने आसानी से नहीं ले सकते कि वो कुछ भी करते रहेंगे और सरकार कोई बहुत कड़े और ठोस कदम नहीं उठाएगी, केवल वार्ता ही वार्ता होती रहेंगी। तो उनके मन में भी एक फियर का भाव आया होगा। और आप जानते हैं जो आपका, आपके सिविल सर्विस का जो सिनॉप्सिस है, उसमें इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी, ये दोनों ही उसमें एक प्रोमिनेंट पॉइंट्स के रूप में दिए हुए हैं। तो डेफिनेटली जो इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज थी। तीसरी जो छोटी सी खबर है मित्रों, वो है मानसून को लेकर के। आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे मानसून बढ़ रहा है, तो मैं समझता हूं कि एक बहुत अच्छा ये मौका है जब आप मानसून को लेकर के एक बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। अरब सागर का मानसून कहां तक पहुंचता है, बंगाल की खाड़ी का मानसून कहां तक है, दक्षिण पश्चिम मानसून कैसे आता है, फिर उत्तर पूर्वी मानसून कैसे आगे बढ़ता है, किन किन क्षेत्रों में किस कितनी कितनी रेंज होती है, फिर वहां कौन कौन सी फसलें हो रही हैं, उनका क्या क्या इंपैक्ट हो रहा है, हवाओं की गति क्या होती है। मैं समझता हूं कि एक बहुत अच्छा मौका है कि आप मानसून की इस तरह की खबरें, हालांकि डायरेक्ट तो आपके काम की नहीं होंगी, लेकिन इस तरह की खबरों का सहारा लेकर के आप ज्योग्राफी की बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो मित्रों, मानसून की खबर थी। और इसके बाद जो एक छोटी सी जो खबर थी वो थी कि पब्लिक स्पीक के अंतर्गत जो एक विषय था जो दिया है कि उड्डयन, पर्यटन और संस्कृति के क्षेत्र में सरकार की क्या पहल रही है। मैं समझता हूं एक बार फिर से ये पब्लिक स्पीक का ये जो विषय है आपके सिविल सर्विस के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। इंपॉर्टेंट इस मायने में है क्योंकि जो उड्डयन है, पर्यटन, संस्कृति, ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और आप देख रहे हैं कि भारत सर्विस सेक्टर को कितना इंपॉर्टेंट दे रहा महत्व दे रहा है। और खासकर हमारे प्रधानमंत्री जी जब भी विदेशों में जाते हैं, वहां जो भारतीय हैं उनका हमेशा ये आह्वान करते हैं कि आप अपने यहां, आप जिन देश में रह रहे हैं वहां से कम 5 परिवार को भारत में पर्यटन के लिए भेजिए, क्योंकि वो ये मानकर चलते हैं, और जो सही भी है, कि पर्यटन से भारत के आर्थिक विकास की गति को एक बहुत तेजी मिल सकेगी। और यह सच भी है, इस पर कभी हो सका तो हम लोग विस्तार से बात करेंगे। तो पर्यटन जो एक टॉपिक है, मुझे लगता है कि हमारे सिविल सर्विस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस पब्लिक स्पीक प्रोग्राम को सुनने के बाद आपको एक ही जगह ये पता लग सकेगा कि सरकार ने इन क्षेत्रों में के लिए क्या क्या पहल की है। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि ये भी आपको जरूर सुनना चाहिए। तो फ्रेंड्स, AIR न्यूज के बारे में इतना ही। आज से अखबारों की क्लिपिंग्स भी आपको पुराने पैटर्न पर मिलनी शुरू हो जाएंगी। फ्रेंड्स, 2 क्लिपिंग्स अखबारों की, एक दैनिक जागरण से है और एक इकोनॉमिक टाइम्स से है, जो म्यांमार में अभी भारतीय सेना ने जो कार्यवाही की थी उसको लेकर के है। और खासकर दैनिक जागरण का तो बहुत ही बेसिक आर्टिकल है, प्लीज आप इसको जरूर देखें। और म्यांमार ने थोड़ा खासकर जो और इकोनॉमिक टाइम्स का जो आर्टिकल है वो थोड़ा एनालिटिकल रूप लिए हुए है, तो आप उसको देख लेंगे, उसके एनालिटिकल रूप को लेकर के फिर हम कभी और भी चर्चा कर सकते हैं, देखते हैं कि ये किस रूप में आता है। मित्रों आपको मालूम है कि जो रेलवे पर एक कमेटी बैठी थी, विवेक देव राय कमेटी, इस पर हम लोगों ने पहले काफी चर्चा की है, मैं उस पर नहीं जाता, उसको उसके प्रो जो रिकमेंडेशंस हैं उनको लागू करने के बारे में टाइम्स ऑफ इंडिया ने फिर से अपना प्ली दिया है, इससे रिलेटेड एक न्यूज़पेपर की क्लिपिंग्स है। एक खासकर अभी जो अप्रैल में जो आंकड़े आए हैं इंडस्ट्री सेक्टर के, उसको लेकर के मैं डाल रहा हूं केवल एक संक्षिप्त से जानकारी के लिए। और एक इंटरव्यू है दोस्तों ये मानिक सरकार का, जो त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर है और बहुत ही रेपुटेड चीफ मिनिस्टर माने जाते हैं, उनका एक छोटा सा इंटरव्यू है, क्योंकि मुझे लगता है कि नॉर्थ ईस्ट अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो रहा है, ऐसी स्थिति में वो आप देख सकते हैं। एक सामान्य सा इंटरव्यू है लेकिन मैं समझता हूं कि एक अच्छा इंटरव्यू है। दोस्तों अब मैं आता हूं अंतिम चरण पर, जो आप लोगों के फीडबैक का चरण है, ईमेल का चरण है। अभी मैं केवल सैटरडे और संडे को जिन स्टूडेंट्स ने ईमेल लिखे हैं केवल उन्हें ले रहा हूं आज, और बाकी जो ईमेल है मैं देखने के बाद उन्हें धीरे धीरे कवर करूंगा। तो सबसे पहले प्रीति सागर को मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से और अपने प्रिय श्रोताओं की ओर से भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने यूपी पीएससी का मेंस क्वालिफाई किया है, बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति, और ईश्वर से प्रार्थना है कि इंटरव्यू को भी बहुत अच्छे से क्वालिफाई करके अंतिम सफलता आप प्राप्त करें। प्रीति ने लिखा है कि इसका बहुत बड़ा श्रेय मैं एकेडमी की इस डेली ऑडियो गाइडेंस को देना चाहूंगा, तो प्रीति इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों इसके बाद एक मेल है मेरे पास इकरार अहमद का, जो सेकेंड बैच के स्टूडेंट थे, बाराबंकी से हैं ये, खासकर यहाँ से पढ़ के जाने के बाद जो हम लोगों ने एक क्लब बनाया है AFEIS क्लब, उसमें काम कर रहे हैं, तो इन्होंने जानकारी दी है कि वहाँ के कैसे वो गांव के बच्चों के बीच में जाकर के इसके संदेश को फैला रहे हैं, और उन्होंने अपना एक जो ऑब्जर्वेशन है वो भी लिखा है कि कितना उनमें एक जनरल सेंस है और कैसे एजुकेशन के बारे में सोचते हैं। तो इकरार अहमद जी आपको बहुत बहुत इस बात के लिए धन्यवाद कि आप एक्टिव हैं, और प्लीज़ इसी तरह से एक्टिव बने रहें, आप देखेंगे कि कैसे आपके क्षेत्र में आपकी धीरे धीरे पहचान बनती चली जाएगी, और सबसे बड़ा है कि आपको आत्मसंतोष मिलेगा और आत्मविश्वास भी बढ़ेगा, और इससे कहीं ना कहीं सिविल सर्विस की तैयारी में आपको मदद मिलेगी। मित्रों इसी के साथ ही जो मेल ले आए हैं वो बी एस मीना का जयपुर से है, राघवेंद्र मिश्रा का इलाहाबाद से है, सागर थुबे का है, मित्रपाल का सिरसा से है, और हरिओम भार्गव का लखनऊ से है। आप सबका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों दो स्टूडेंट्स के और मेरे पास मेल हैं, जो अभी अक्टूबर की जो क्लासेस होने वाली हैं, जिन्होंने उसके लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया है, इन्होंने अपने मोबाइल नंबर दिए हैं और रिक्वेस्ट किया है कि जो भी स्टूडेंट उनके एरिया से आ रहे हैं अगर वो चाहें तो इनसे वो कांटेक्ट कर सकते हैं। एक नाम है मेरे सामने राहुल सासाने का, जो थाने से हैं, उन्होंने लिखा है कि थाने और मुंबई से जो भी स्टूडेंट एकेडमी में अक्टूबर में आ रहे हों वो चाहें तो उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उनका मोबाइल नंबर है 8286809066, मैं रिपीट कर रहा हूं 8286809066। दूसरे स्टूडेंट हैं गौरव साहू जो झांसी से हैं, और उनका मोबाइल नंबर है 8765706670, मैं रिपीट कर रहा हूं 8765706670। तो मित्रों इसी के साथ ही मैं आज के इस AFEIS.com की डेली ऑडियो गाइडेंस की समाप्ति की अनुमति चाहूंगा, कल आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, नमस्कार।